मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 9 जुलाई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी हरीश कुमार का जो सुल्तानपुरी दिल्ली से हैं, जिन्होंने एकेडमी के 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे प्रवासी श्रमिकों की जो अब सुध ली जा रही है, यानी कि उन पर नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उस पर बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक घटना, कल कैबिनेट की मीटिंग थी, न्यूज़ में आपने सुना, दूरदर्शन चैनल पर विस्तार के साथ उस पर बातचीत भी हुई थी। कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिए हैं। देखिए, जो न्यूज़ होती है, चाहे वो अखबार की हो, रेडियो की हो या दूरदर्शन की हो, उनके साथ आप न्याय तभी कर पाते हैं जब सिलेबस आपके दिमाग में स्पष्ट होता है। और बार बार मैं इस बात की आप लोगों को याद दिलाता भी रहूँगा माफीनामे के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट तैयारी करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन सिलेबस उनके दिमाग में नहीं होता है। तो ऐसे में कैसे तैयारी की जा सकेगी? देखिए, अगर आप बाजार जाते हैं तो बाजार जब जा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि आपको बाजार में जाकर के क्या क्या खरीदना है। ये बात अलग है कि कुछ दूसरी चीजें भी दिख गई तो आपने शौक के रूप में उसे खरीद लिया, लेकिन आपके दिमाग में रहता तो है ना। और उसी बाजार में आप जाते हैं, आप ऐसा नहीं होगा कि आपको सब्जी खरीदना है और आप कपड़े के बाजार में चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से तैयारी के साथ भी होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, चाहे अखबार हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो रेडियो न्यूज़ हो, कोई भी हो। तो दोस्तों, अगर कोर्स का जो प्रॉस्पेक्टस है आपके दिमाग में स्पष्ट है तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, कर कैबिनेट ने डिसीजन लिया, देखिए कैबिनेट ने डिसीजन लिए, उसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि बकायदे जो हमारा कृषि बुनियादी ढांचा कोष है, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए की सरकार ने कर्ज देने की योजना बनाई है। ये घोषणा हुई, 1,00,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ रुपए। ये कर्ज किनको दिया जाएगा? ये कर्ज सहकारी समितियों को दिया जाएगा, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाएगा, जो स्टार्टअप है उनको दिया जाएगा और सस्ते दर पर दिया जाएगा। ये कर्ज तो वैसे आप जाइए बैंक से ले लीजिए, लेकिन ये सस्ते दर पर दिया जाएगा। सस्ते दर पर इसलिए दिया जाएगा ताकि ये कृषि से संबंधित जो हमारी आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनका निर्माण हो सके। और आप जानते हैं कि कृषि व्यवस्था की जो हमारी कुछ दूसरी कमजोरियों के साथ साथ जो आधुनिकता संबंधी कमजोरियां हैं वो अभी आधारभूत संरचना की हैं, कि हमारे पास वेयर हाउसेज नहीं है, यानी कि गोडाउन नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास परिवहन के बहुत अच्छे साधन नहीं है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है। तो इसके लिए बुनियादी ढांचा डेवलप करना है तो सरकार ने उसे इंसेंटिव के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कही है, जिसमें बकायदे एक व्यक्ति, एक उद्यमी को, अगर वो इस काम के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप कुछ वेयर हाउस बनाना चाह रहे हैं, गोडाउन बनाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप जाइए, आपको बकायदे 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिल जाएगा इसी कोष से और उस पर बकायदे ब्याज में भी छूट मिलेगी, 3% की छूट मिलेगी और 7 साल के लिए आपको ये कर्ज मिल जाएगा ताकि लोग सामने आए। तो अब आप देखिए कि कृषि व्यवस्था के लिए सरकार क्या कर रही है, या कह लीजिए किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में क्या कदम उठा रही है। तो ये एक नया तथ्य हो गया जो आपके आंसर में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक पहली खबर थी। दूसरी खबरें अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। एक तथ्य जो अखबारों में आपको पढ़ने को मिला होगा कि जो अमेरिका है उसने बकायदे अपने आप को जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO उससे अलग कर लिया है विधिवत तरीके से, और अगले साल वो बकायदे अलग हो जाएगा। जैसे उसका वर्ष पूरा होगा जुलाई में 2021 में, वो विधिवत तरीके से अलग हो जाएगा, आप कह लीजिए वो WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। आपको मालूम है कि कोरोना जब से शुरू हुआ है तो अमेरिका लगातार चीन पर आरोप लगाता रहा है कि एक चीन से ही इसकी शुरुआत हुई है, और चलिए चीन का आरोप यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, चीन पर लगाया गया, अमेरिका का और दूसरे बहुत से देशों का भी ये मानना है कि WHO ने चीन को सपोर्ट किया और इसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। तो उसके विरोध में अमेरिका ने शुरू में ये कहा था कि वो इसकी सदस्यता को छोड़ेगा और अब उसने छोड़ने का निर्णय ले लिया है। अब बाकायदे अमेरिका का यह भी कहना है कि चीन तो WHO को केवल 300 करोड़ रुपए देता है जबकि अमेरिका 3400 करोड़ रुपए देता है, और इसके बाद भी जो WHO है वो चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। तो इस तरीके से अब अमेरिका उससे अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप विश्लेषित कर सकते हैं कि अमेरिका का यह निर्णय कितना सही है कितना गलत है। देखिए, किसी संस्था से अलग हो जाना हल नहीं होता है। अगर संस्था में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। अमेरिका को उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या इसमें सुधार किए जाए, क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इस संस्था की आवश्यकता को तो हम नकार नहीं सकते कि नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, ये पुरानी हो गई है, इसे खत्म किया जाए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे पहले जो इसकी भूमिकाएं रही हैं हमारे दूसरे बीमारियों के लिए, उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। और अगर अब अमेरिका अलग हो रहा है तो सीधी सी बात है कि इस संस्था पर चीन का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब चीन का दबदबा बढ़ जाएगा तो चीन के जो की जो नीतियां होती हैं, उसकी जो नीयत होती है, उसको लेकर के पूरी दुनिया लगातार आशंकित रहती ही है। अमेरिका को यह भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर वो संस्थाओं को छोड़ता चला जाएगा तो उसका जो वैश्विक प्रभाव है डेफिनेटली उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, आप देखिए कि कैसे अमेरिका ने उससे अपने आप को अलग कर लिया, जो कि सीधे सीधे जलवायु से संबंधित मामला है जिससे कि पूरा विश्व अभी त्रस्त है। तो इस तरीके से अमेरिका के अभी जो निर्णय हो रहे हैं, खासकर ट्रंप के समय में, उनको लेकर के पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चिंतित है। उदाहरण के तौर पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक आदेश निकाला गया है जिसमें जो विदेशी छात्र हैं उनसे कहा गया है कि आप ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कीजिए, अगर आप ऑफलाइन क्लासेज अटेंड नहीं करेंगे तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज इस बात को लेकर के परेशान है, और बकायदे हार्वर्ड और MIT जो दो बहुत ही दुनिया की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो सीधे सीधे कोर्ट चली गई हैं। उन्होंने बकायदे ट्रंप के इस आदेश को क्रूर कहा है, क्रूर, और वास्तव में क्रूर है। बेचारे वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आपको क्लास अटेंड करना है, वो भी तब जबकि कोरोना का इतना ज्यादा संकट फैला हुआ है, मतलब आप उनकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। तो इसको भी लेकर के जो ट्रंप का ये आदेश है, बहुत ज्यादा ट्रंप आलोचना के घेरे में है, लेकिन लेट अस सी कि क्या होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि तीन जो ट्रस्ट हैं, फाउंडेशन हैं, जो खासकर राजीव गांधी और के नाम और इंदिरा गांधी जी के नाम से जुड़े हुए हैं, उनके जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे संबंधित जो कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राजीव गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। ये तीन ट्रस्ट हैं, इन तीन ट्रस्टों की जाँच होगी। जांच जो है अंतर मंत्रालय समिति करेगी। अंतर मंत्रालय समिति का क्या मतलब हुआ कि इसको कोई एक ही मंत्रालय का अधिकारी नहीं करेगा, इस एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी होंगे। जैसे उसमें एक गृह मंत्रालय का अधिकारी होगा, एक शहरी विकास मंत्रालय का अधिकारी होगा और एक वित्त मंत्रालय का अधिकारी होगा। तो अंतर मंत्रालय समिति हो गई। अब ये जो जांच की जाएगी, ये किन किन बातों की जांच की जाएगी, देखिए, एक है धन शोधन, यानी कि जो बाहर से धन आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन शोधन एक अलग सिस्टम होता है जहां आप काले धन के रूप में धन लेकर के आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रूप में आया है। फिर है आयकर नियम, जो इनकम टैक्स के जो लॉ होते हैं, कहीं उनका तो उल्लंघन नहीं किया गया है। और इसके बाद है विदेशी चंदा नियमन, बकायदे इसके लिए हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि यदि कहीं विदेश से आप चंदा लेते हैं तो आपको उसके लिए सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। तो ये सब स्वीकृति ली गई नहीं ली गई, इसको लेकर के बातें हो रही हैं। और आपको मालूम है कि इन फाउंडेशन की जाँच करने की बात तब उठी थी जब पता लगा था कि इन फाउंडेशन को चीन से बहुत अधिक रकम अब मिली थी। और वैसे भी देखिए, जब अगर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि सीधे सीधे इस फाउंडेशन पर प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, जो हमारे NGOs हैं, जो ट्रस्ट हैं, जो फाउंडेशन हैं, वो कभी कभी इस तरह के विवादों के घेरे में आते रहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, उसमें फिर यह घटना एक उदाहरण का काम करेगी। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह प्रवासी श्रमिकों की सुध। कल कैबिनेट ने एक बहुत जबरदस्त निर्णय लिया है और मुझे यह निर्णय बहुत ज्यादा स्वागत योग्य लग रहा है। निर्णय यह है दोस्तों कि जो हमारे प्रवासी श्रमिक जब शहर में काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा संकट होता है कि वो रहें कहाँ। तो उनके रहने के लिए एक बकायदे सरकार योजना लेकर के आई है, जिसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना की एक उप योजना कह सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मालूम है, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती कीमत पर मकान मुहैया कराना, फ्लैट्स बना बना करके दिए जा रहे हैं, है ना। उसका कुछ खर्चा सरकार वहन करती, कुछ खर्चा खुद जो फ्लैट लेगा वो वहन करता है। उसमें अब बहुत सारे फ्लैट्स खाली भी हैं, तो सरकार ने अब बकायदे किए प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर आवास मिल सके और एक अच्छे वातावरण में वो रह सकें। ऐसे नहीं कि गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, नालियां बह रही हैं, मच्छर भिनभिना रहे हैं, तो इसकी व्यवस्था की है, जो बहुत बहुत मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए दो बातें की गई हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो दो तरह की हैं। पहला तो यह है कि अभी जो आवास खाली हैं, जो सरकार वित्त पोषित आवास परिसर हैं, ऑलरेडी खाली हैं, बहुत से उसमें खाली हैं, उनको मजदूरों को किराए पर दिया जाएगा और 25 साल के लिए किराए पर दिया जाएगा, तो वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और जो दूसरा है वो है कि जो निजी सार्वजनिक इकाइयां हैं, उनको भी जमीन सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि आप इन मजदूरों के लिए आवास बनाइए और 25 साल तक आप उनसे किराया लीजिए। डेफिनेटली किराए पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहेगा। दोस्तों इसकी डिटेल्स अखबारों में दी हुई है, आप डिटेल्स देख लेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज एग्जामिनेशन में डिटेल्स नहीं पूछी जाती हैं। अब यहां जो मैंने शीर्षक चुना है वह है प्रवासी श्रमिकों की सुध। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए, जो मैंने अभी आवास की बात कही है ये केवल एक सुध है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी दूसरे सुध लिए गए हैं। किस तरह के लिए गए हैं? उदाहरण के तौर पर अब ये कोशिश हो रही है कि बकायदे जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी ही न हो और वो जहां रह रहे हैं उनके आसपास ही उनको कार्य उपलब्ध करा दिया जाए, रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। एक राष्ट्र एक कार्ड की जो बात हो रही है, प्रवासी मजदूरों के बहुत ज्यादा वो फेवर में होगी। सरकार अब ये भी कोशिश कर रही है कि ये सब असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका पंजीयन कराया जाए और पंजीयन कराने के बाद जो दूसरी सामाजिक सुरक्षा इनके लिए हो सकती हैं, जो दूसरों को मिलती हैं, वो सामाजिक सुरक्षा इनको उपलब्ध कराई जाए। ये भी मांग की जा रही है कि इनके लिए भी कुछ न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था की जाए ताकि ये शोषण से बच सकें। यहां तक कोशिश हो रही है कि जो कंपनियां हैं जो मजदूरों को हायर करती हैं वो सीधे मजदूरों को हायर करें, बीच में जो दलाल होते हैं जो इनकी सप्लाई करते हैं शहर में आकर के, उस बीच के दलाल या जो मीडिएटर हैं वो मीडिएटर को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मीडिएटर इनकी मजदूरी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। तो ये सारी बातें अब प्रवासी श्रमिकों के संदर्भ में होने लगी हैं, तो ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं शिवानी शर्मा और डॉक्टर सी के मिश्रा, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।